अच्छा इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं हम अपना रिव्यू सेशन। बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या बात है। इनकी एडमिन्स, आप इनकी अटेंडेंस ज़रूर रखें कि कौन कौन आता है और कौन नहीं आ रहा। उनको ज़रा ईमेल भेजें कि वो क्यों नहीं आ रहे, अनलेस कि किसी ने एक्सक्यूज ऑलरेडी किया हो। और जो आते भी हैं बाज लोग, अब मुझे इतना तो सबका पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन कौन लोग हैं माशाल्लाह जो फुल तैयारी के साथ हमेशा आते हैं, और कौन लोग हैं माशाल्लाह वो बस इधर उधर से ही बताते रहते हैं, पता नहीं रीड कर रहे होते हैं या क्या करते हैं। तो वो भी पता चल जाता है कि किसकी तैयारी कितनी है। और मेरे ख्याल में आप लोगों को आपस में भी अब पता चलता होगा कि कौन कितनी तैयारी के साथ आता है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग घर में पढ़ लिया करें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा यकीन करें ये बातें आपको सिर्फ एक एक दफ़ा जान लेने से नहीं आएंगी। इसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश मेहनत करनी होगी, और घर में जो आपका पढ़ना होगा जाहिर है दोबारा आके यहाँ पे आप रिव्यू करेंगे तब वो जहन में बैठेगा। जब भी जब आपका टेस्ट का टाइम आता है तो फिर इतनी घबराहट होती है क्योंकि आपने दोबारा कभी भी खोला नहीं होता। तो साथ साथ जो लोग करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा किताबो तलाक का एंड का जो है ना, ये हमने कर लिया था ना खत्म, किताबो तलाक को लास्ट टाइम मुकम्मल किया था, राइट। अच्छा तो हम थोड़ा सा जरा एंड का दोबारा देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा हम जल्दी जल्दी गुजर गए थे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما। जी शाजिया नासिर आप बताएंगी कि जब किसी औरत को का हमल हो यानी हामिला हो कोई औरत, तो उसकी इद्दत की मुद्दत क्या होगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
उसके हमल वज़ाए हमल उसकी इद्दत की मुद्दत होगी।
अच्छा, और वज़ाए हमल कितना मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है।
वो एक घंटा भी हो सकता है और 9 महीने भी हो सकते हैं।
शाबाश, यानी अब उसके अंदर याद रखिएगा कि उसके अंदर आपको ये नहीं है कि 4 महीने 3 महीने 3 है फलां ये वो इद्दत, चाहे अब वो यानी बिल्कुल फारिग होने वाली हो, अल्लाह माफ करे अबॉर्ट हो जाए उसका बेबी, वो भी एक वजह हमल की कोई वो चीज हो सकती है, यानी बेबी नहीं बच्चा अबॉर्ट हो गया और खत्म हो गया उसका हमल, यानी जो ही हमल खत्म होगा वो उसकी इद्दत का टाइम होगा। अच्छा ये मुझे बताएंगे जरा, जज़ाकअल्लाह खैरन शाजिया, ये शहादी आप बताएंगी कि किसी का शौहर फौत हो जाए तो उस प्रेग्नेंट औरत की कितनी इद्दत है, और कोई किसी को तलाक हो जाए और वो प्रेग्नेंट है उसकी कितनी इद्दत है।
किसी को तलाक हो जाए तो वो तो 3 हैज है ना, और खावन फौत हो जाए तो उसके 4 महीने और 10 दिन है।
अच्छा जी ठीक है, मैं प्रेग्नेंट की बात कर रही हूँ, प्रेग्नेंट हामिला हो, अगर
हामिला हो तो वजाए हमल है।
नहीं, किसकी किसकी है वजाए हमल, जिसका खाविन फौत हो जाए या जिसको तलाक हो।
इसका खावन फोटो।
अच्छा, और जिसको तलाक हो उसकी,
तलाक हो तो उसकी भी।
अच्छा मैं किसी और से आप पूछती हूँ ताकि आपको ज्यादा सही पता चल जाए। जी और क्यों नहीं लोग आए हुए, इतने कम लोगों से मैं कैसे पूछूं फिर, अब तो काफी लोग यहाँ पे भी। जी नसरीन आप बताएंगी।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी उसकी भी सेम ही है ना।
अच्छा, यानी जिसको तलाक हो वो प्रेग्नेंट है उसकी जो इद्दत कितनी है,
इद्दत जो है वज़ाए अमल है ना,
और जो बेवा हो जाए, बेवा हो जाए यानी उसका खामद फौत हो जाए तो तब इद्दत कितनी है।
तब भी इतनी है।
शाबाश, हाँ ये बात को जज़ाकअल्लाह खैरन नसीम। شہادی آپ بھی اپنے پاس لکھ لیں کہ یہ چاہے خامد فوت ہو چاہے طلاق ہو جائے, جو عدت ہے پریگننٹ کی سیم ہے, ہر جگہ پہ سیم ہے, اور وہ ہے جو ہی اس کی پریگننسی ختم ہوتی ہے. اب اس کو ثلاثہ قروء جو اس کو تین حیض, اس کو نہیں انتظار کرنا, نہ ہی اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. اس کی چاہے اب 2 گھنٹے میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے یا ابارشن ہو گئی ہے یا کچھ ہو گئی ہے, اب وہ اس وہ عدت سے باہر آ جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایک ڈرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ پریگننٹ ہے اور وہ سوچتا ہے نہیں ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے, 3 حیض تک تو یہ کسی کے ساتھ ہوا تھا اور میں نے ان لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یعنی 3 حیض تک میں ابھی انتظار کروں گا اور اس کے بعد ہی میں کسی وقت بھی بیچ میں کر سکتا ہوں رجوع, تو اب میں ذرا اس کو ستانے کے لیے ذرا اس کو مطلب ہے کہ چھوڑے رکھوں اس طرح اور اینڈ میں جا کے کر لوں گا رجوع. ایسا نہیں ہے. اگر بیچ میں خدا نخواستہ اس کا جو بچہ پیدا ہونے کا تو ابھی دن نہیں تھے, ابھی کافی دور تھا بچے کا ٹائم, مگر ایبورٹ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وضع حمل تو ہو گیا, ختم ہو گیا اب حمل, اور تو عدت ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی, سب کو سمجھ آ گئی نہیں یہ بات؟ ہاں جی بالکل. اور تھوڑا تھوڑا پلیز, اب سے آپ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا اور زیادہ آپ کے لیے, میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ذرا نرم غذا ہوتی ہے, پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں تو تھوڑا سالڈس بھی لینے لگتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جب یہ احکامات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ساتھ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ اس کی دلیل میں کدھر سے دوں گی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ سے کوئی بھی بات کرے گا تو پھر آپ دلیل کو لے کر آئیں گے, مثال کے طور پہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے وہ یہ تھے اور پھر ان کے حجت الوداع کے موقع کے اوپر ان کی وفات ہو گئی اور ان کی بیوی حاملہ تھی, تو اس کے بعد کچھ ہی دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا, ان کا عدت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے. اسی طرح کسی نے کسی کو طلاق دی تھی اور وہ ابھی گئے, انہوں نے کہا کہ میں واپس آ کے رجوع کر لیتا ہوں, اب وہ گھر سے نکلے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بیوی کا بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا, تو عدت ان کی ختم ہو گئی طلاق کی. اور خلا والی کی عدت کتنی ہے؟ خلا والی کی عدت کتنی ہے؟ یہاں پہ لکھ دیں, یہاں پہ لکھ دیں آپ لوگ, سب کو پتا ہونا چاہیے خلا والی کی. سب کی الگ الگ لکھیں, ہم خلا والی کی آفٹر ون طلاق نہیں, خلا والی کی. خلا کے لیے تو طلاق ہے نہیں نا, کہ بات ون منتھ نہیں, ون ہیز, ٹھیک ہے؟ ون ہیز, ون پیریڈ, جی بالکل. آپ اس کا چارٹ بنائیں, ہم نے میرے خیال ویب سائٹ پہ بھی کچھ اس طرح کا ڈالا ہوا ہے, اگر نہیں ہے وہاں پہ تو آپ میں سے جس کا چارٹ اچھا ہوگا پھر ہم وہ ڈال دیں گے, ٹھیک ہے؟ کہ کس کس کی کتنی عدت ہے. میرا جہاں تک خیال ہے ڈالا ہوا ہے, کہ میں نے اس وقت جب پڑھایا تھا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو چارٹ کے ساتھ سمجھایا تھا اور سب کو بہت اچھی طرح سے سامنے آ گیا تھا اور اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گئی تھی. لیکن اگر آپ لوگ اس طرح سے ہی اس کو رہنے دیں گے تو یہ جلدی سے بھول جائے گا. تو آپ لکھیں کہ پریگننٹ کی, نیچے بریکٹ میں لکھ لیں بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس کی وضع حمل ہے, اسی طرح اس فلاں کی اتنی ہے فلاں کی اتنی ہے. واٹس دا ڈفرینس ون منتھ میں اور ون پیریڈ میں ڈفرینس ہے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو پیریڈس بہت جلدی آ جاتے ہیں, 3 ہفتے بعد ہی اکثر کو تو ہوتا ہے, لیکن کچھ کے اتنے ہو جاتے ہیں کہ 1 مہینے سے بھی اوپر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن, انہوں نے ڈال دیا یہاں پہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تو یہ اچھا, جتنا حلالہ کے بارے میں بات ہے, حلالہ کیا چیز ہے یہ بتائیں گی مجھے زاہدہ بہزاد, آپ بتائیں گی.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جی, حلالہ, حلالہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ بائن طلاق ہو گئی تو اب اس کا وہ اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی, تو وہ دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر وہ اس کی زوجیت کا پورا حق ادا ہوئے, اور پھر اگر وہ جب طلاق دے تو پھر وہ اس سے کر سکتی ہے.
تو یہ حلالہ ہے؟
हलाला वैसे तो हराम है कि अगर उसको इसलिए कहा जाए कि ये निकाह कर ले और उसी वक्त वो तलाक दे दे और वो अपने शौहर के पास चला जाए, तो ये हलाला वैसे तो हराम है।
अगर वैसे मसला है कि कोई औरत को उसका शौहर तलाक दे देता है, बाइन हो गई और फिर वो या रेजई तलाक भी थी लेकिन इद्दत खत्म हो गई और उसके बाद उस औरत ने कहीं और जाके शादी कर ली, लेकिन रजई में तो खैर हलाला का नहीं सवाल होता। तो खैर बाइना अगर तलाक है और उसने जाके कहीं और शादी की, वो ठीक ठाक शादी की, मतलब कोई ऐसी नीयत नहीं थी, और उसके बाद फिर वो वहां से फारिग हो गई, तो अब वो पहले हस्बैंड से, जो पहला था एक्स हस्बैंड, उससे दोबारा शादी करती, क्या इसको भी हलाला कहेंगे?
नहीं, इसको नहीं हलाला कहते।
शाबाश, ठीक है, बिल्कुल। मैं यही जानना चाहती थी कि आप लोगों को, बिल्कुल जज़ाकअल्लाह खैरन, आप लोगों को बिल्कुल समझ है कि हलाला सिर्फ वो होगा जिसके अंदर नियत के साथ ये किया जाए कि अब यहां से मैं शादी इसलिए करूं ताकि फिर वापस दूसरे के लिए, पहले वाले के लिए मैं हलाल हो जाऊं, वो सिर्फ हलाला है। ठीक है, हलाला ये नहीं है कि कोई भी, मतलब है कि किसी की भी ऐसा मसला हो गया और जेन्युइन केस था, वो जेन्युइनली जाके दूसरी जगह करती है और उसके बाद वहां से फारिग हो जाती है, फिर वापस आती है, तो इसको हलाला नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हलाला का क्या है? सिर्फ वो जिसमें नियत के साथ ऐसा पूरा प्रोग्राम बना के, यानी जब इनका खत्म हो गया तो अब वो पूरा प्रोग्राम बना के फिर उसके बाद वो वो करते हैं, ये सारा अपने उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो वो हलाला। चाहे उसके अंदर दूसरे आदमी को भी शामिल किया होता है बाज दफा कि तुम बस एक रात गुजार के कल को तुम तलाक दे देना, और उसके ऊपर पैसे भी देते हैं, यानी पहला आदमी जो होता है ना वो पैसे दे देता है उसको, कि पैसों के ऊपर कोई भी ऐसे गरीब से, कोई भी ऐसे अपने किसी को भी पकड़ के, तो उसको चलो जी तुम कर लो और कल को तुमने तलाक देनी है सुबह को, और इतने पैसे तुम्हारे लिए। तो ये इसके बारे में क्या वईद है? एक मिनट, मैं अभी क्वेश्चन लेती हूँ। इसके इसकी क्या वईद है नफीसा, आप बताएंगी क्या वईद है हलाला की? जी, अच्छा, मेरे ख्याल आपका कंप्यूटर पे भी ऑन है। जी, क्या वईद है इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
जी इसके लिए बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त गुना है, और इसके लिए गुना है बहुत बड़ा ना, गुना कबीरा।
और मतलब वईद क्या है इसके ऊपर?
नहीं,
कोई और बताएगा?
नहीं,
जी, यास्मीन इकबाल, आप बताएंगी कि क्या इसके बारे में वईद है? वालेकुम अस्सलाम।
दयूस के ना कहा जाता है कि जैसे जो लोग कारोबार करते हैं कि हलाले।
ये पढ़ा था आप लोगों ने या मैं ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ? ये पढ़ा था ऐसा कुछ?
ये हमने वैसे नहीं पढ़ा, नहीं है ये
हमने। अच्छा अच्छा
अच्छा
अच्छा
हमने ये देवा और मुतरिका, मैंने हलाला के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें लिखा कि सब तरीन गुनाह कि ये कारोबार।
जी सही, ये इसके ऊपर हलाला करने वाले पे भी और करवाने वाले पे भी, दोनों के ऊपर लाना था।
दोनों पे।
ठीक है,
अगर आपने जब ये बताया, जो आपने कहा वो हलाला करने के लिए दिया तो नहीं थी, तो अगर औरत की जैसे तलाक हो गई तो वो ये नियत करके दूसरे से निकाह करे कि मैं फिर निकाह वो तलाक लेके फिर दोबारा पहले के पास जाऊंगी, तो क्या नियत करनी है उसके लिए?
नहीं, ये नियत करेगी तो ये हलाला होगा, यही तो हलाला है कि कोई ये प्रोग्राम बैठ के बनाते हैं कि अब ऐसा करेंगे कि अब दूसरे के साथ करके, तो फिर बाकायदा प्रोग्राम बनते हैं इसके लिए।
ये तो सही क्या है?
सही ये है कि फिर ये नियत नहीं हो, बस वैसे ही कहीं शादी हुई है और वैसे ही कहीं से तलाक हो गई, या वैसे ही इत्तेफाक से कोई बंदा फौत हो गया और फिर वापस आती है, तो वो तो सही है, फिर तो सही है। लेकिन हलाला इसीलिए इतना गुना है, इसीलिए इसके ऊपर लानत है, क्योंकि आप बैठ के प्रोग्राम बना रहे हैं कि अब जी दूसरे के पास जाएगी, फिर वहां से तलाक होगी, फिर मैं अगले दिन ये इसको खर्चा पानी उस बंदे को दे दूंगा और फिर मैं इससे वापस शादी कर लूंगा, तो ये हलाला है और यही गुना है।
यही मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसके इसमें नियत से कोई, इसके नियत भी एक औरत का निकाह हुआ मगर उसकी तलाक हो गई और तलाक के बाद फिर दूसरे से निकाह हुई, फिर अगर उससे नहीं बनी तो देन शी कैन कम बैक टू हर पहले हस्बैंड, राइट?
जी
मगर ये नहीं है कि नियत करे दूसरे
जी,
शादी करते वक्त
बिल्कुल
तलाक लेके,
बिल्कुल बिल्कुल,
राइट?
बिल्कुल, बिल्कुल,
बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ सवाल किया है, मैं एक मिनट इनका सवाल जरा पढ़ लूँ। क्या है कि इफ तलाक रजई है व्हेन वुमेन इज प्रेग्नेंट देन दे कैन री मैरी, राइट? तलाक रजई है, बिल्कुल। अगर प्रेग्नेंट है आपका मतलब, मैं जहां तक मैं समझ रही हूँ कि तलाक रजई थी, वो प्रेग्नेंट थी, वजह हमल हो गया, इद्दत खत्म हो गई, अब अगर दोबारा करना चाहेंगे तो फिर तो औरत को रीमैरी इस तरह से करना है कि फिर उसको प्रपोजल भेजना है जैसे फर्स्ट टाइम किसी को भेजा जाता है, उसकी मर्जी आप करें या नहीं करें, ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा पढ़ा था हमने, अच्छा जज़ाकअल्लाह खैरन। अच्छा भूल जाते हैं मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा था कि हमने ये पढ़ा हुआ है। इसी तरह आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो इद्दत के या जो सोग के भी मसाइल हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए किसी एग्जांपल के साथ, कि आप एग्जांपल दे सकें, दलील दे सकें कि इसकी दलील क्या है। खाली आपको लोगों को टेस्ट में अब मैं ये देना शुरू करूँ कि फलानी चीज़ की दलील क्या है, क्या ये वाला वाक्या दलील बनता है, ये वाक्या दलील बनता है, या क्या वाक्या बनी दलील बनता है। अच्छा तैयबा आरिफ, आप बताएंगी कि सोग सिर्फ 3 दिन का है, इससे ज्यादा का नहीं है, इसकी दलील आप कहाँ से देंगी?
सॉरी,
सोग जो है ना सिर्फ 3 दिन का है किसी भी मैयत पे, इसकी दलील आप कहाँ से देंगी?
हाँ जी, वो अज़वाज मुतहरात के
अच्छा अब हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि अज़वाजे मुतहरात थी या मोती, आप कहेंगी अज़वाजे मुतहरात में से हजरत उम्मे हबीबा, उन हजरत उम्मे हबीबा की ये है कि उनका उनके जब वालिद अबू सुफियान का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उन्होंने 3 दिन के बाद खुशबू मंगवाई थी और उन्होंने लगाई थी, और हालांकि उन्होंने फरमाया था कि मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। जब देखिए आप किसी के सामने दलील रखते हैं ना तो वो उस बात में वजन होता है, अब बगैर दलील के हम अगर ऐसी बातें करते रहे तो फिर उतना आप किसी को कन्विंस नहीं फिर कर सकते, ठीक है। इसी तरह हम और कोई दलील लेकर आए जी, आहिद सिद्दीकी जी, और कोई दलील लेकर आए।
वालेकुम सलाम। डेथ के वक्त उन्होंने 3 दिन बाद मतलब अपने खाते पे खुशबू मंगा के लगाई थी और यही कहा था कि मुझे हाजत नहीं।
और कोई दलील इसके अलावा, कोई और दलील है आपके पास?
उम्मे हबीबा ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था कि उम्मे हबीबा आज़ाद में तारा उम्मे हबीबा के पास है, उनके वालिद।
ये तो वही वाली दलील हो गई ना जो इन्होंने अभी बता दी है। तो अच्छा ठीक है, चलें मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी इंशाल्लाह। देखें हमें पता होना चाहिए, चलें इनमें से एक भी आप दलील अगर याद रख लें कि मसलन हजरत ज़ैनब बिन जहश ने जब उनके भाई का इंतकाल हुआ था, या हजरत उम्मे हबीबा के बारे में आप उनका वो कर सकती हैं, या एक औरत हजरत उम्मे सलेमा के पास आई तो उसने आके पूछा शोक के बारे में तो शोक का उसके अंदर से दलील ला सकती हैं। तो यानी दलाइल आपके पास होने चाहिए, सोग के हैं, 3 दिन के सोग के खास तौर पे क्या दलील है, लोग आजकल बहुत बहुत दिन सोग मनाते हैं, पहली ईद नहीं मनाते, ये नहीं करते, तो इसके बारे में वईद क्या है, इसके बारे में वईद क्या है? राफिया बेगम आप बताएंगी क्या वईद है इसकी? वईद कह लें या क्या हुक्म है इसके ऊपर?
3 दिन से ज्यादा का तो सोग नहीं करना चाहिए, ये इसके बाद करना गुनाह है।
ये तो मेरी और आपकी बात हो गई।
3 दिन
आप कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लाएंगे? कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लाएंगी इसके ऊपर, कोई फरमान?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे सलमा के पास एक खातून आई थी और उन्होंने कहा था कि मतलब मेरी लड़की का शौहर इंतकाल कर गया, तो फिर आपने कहा था कि इस पे मतलब वो आंख उनकी खराब हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि आंख में सुरमा लगा लेनी चाहिए ना, आंख में तकलीफ है, तो तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, यानी कि 3 बार भी उन्होंने सवाल किया था और 3 बार भी रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था उस चीज के लिए।
सही सही। अच्छा ये आपने कहा कि सोग की, क्या आपने सोग, ये तो उसके ऊपर आ गया ना कि यानी शौहर का अगर इंतकाल हुआ उसके ऊपर आ गया। मैं दलील मांग रही हूँ कि किससे मैं पूछूं अभी? कम लोग आते हैं तो फिर मैं किससे पूछूं? 848 के नंबर से कौन है ये? 848-248 नंबर से कौन है जी? बोलेंगे जरा 848 नंबर से।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी, मैं
दलील बताइए।
मुझे इसकी दलील नहीं पता।
अच्छा देखिए, अब मैं आपको ना दलील के साथ करती हूँ बताती हूँ कि देखिए, आपने फिर ऐसे बोलना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे आपने फरमाया था, मिंबर पे, कि अल्लाह और उसके रसूल पे जो भी ईमान रखता हो, खासतौर पे औरतों के लिए कहा था कि किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाए सिवाय शोहर के। यानी कितनी बड़ी एक बात है जो अल्लाह और उसके आखरत के दिन पे, सॉरी, अल्लाह और आखरत के दिन पे ईमान रखता हूँ। तो यानी जो ईमान वाला है अल्लाह के ऊपर, इसका मतलब है कि जो ये काम करता है, क्या उसको अल्लाह पे ईमान नहीं है, आखरत पे ईमान नहीं? क्योंकि जिसको ईमान हो उसके लिए ये जायज ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा सोग मनाए। वजह इस तरह से दलील होनी चाहिए कि किसी औरत के लिए भी जो भी अल्लाह और आखरत के दिन पे ईमान रखती हो, वो, ये कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले क्या लाया गया? अल्लाह और आखरत पे ईमान। उसके बाद फरमाया गया कि वो 3 दिन से ज्यादा नहीं सोग मनाए। नाम रिपीट करें, किसका नाम, किसका नाम रिपीट करें? इसमें नहीं कोई नाम है, इसमें तो बस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे ये फरमाया था, हर औरत के कान खड़े हो जाने चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि औरत के लिए ही है ना, शौहर के लिए 4 महीने 10 दिन का सोग औरत के लिए, और औरतें ही 3 दिन से ज्यादा क्या साल साल तक सोग मनाती रहती हैं, और ज्यादा सोग मनाने में बड़बड़ के वो होती हैं। बल्कि अगर 4-5 दिन भी हो गए हैं, लोग आते जा रहे हैं घर पे, तो उसी सोग की हालत में बैठी हुई हैं, मेकअप नहीं करती, ये नहीं करती, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि आप बस दिल ही नहीं चाहता, बस सोग सोग उसमें रहें। आपको ये जब दलील मिल गई कि हजरत उम्मे हबीबा को कोई जरूरत नहीं थी कि वो इस वक्त मेकअप करती, लेकिन ये एक मेकअप ही है, खुशबू लगा लेना और उन्होंने रुखसारों पर अपनी लगाई चीज, तो वो मेकअप समझ लेना, ठीक है? तो उन्होंने वो मेकअप लगाया जिसको आज के दिन में हम मेकअप कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त भी फरमाया था और उसके बाद भी फरमाया मिंबर के ऊपर, कि ये किसी औरत के लिए जायज नहीं है। जो अगर हम पहले पूछें कि अल्लाह और आखरत पे ईमान है, अगर है तो फिर जायज ही नहीं है, अगर नहीं है फिर जो मर्जी करते रहो। बिल्कुल शाबाश, आपने ये भी याद अच्छा दिलाया कि फिर शादियों पे भी नहीं जाते, कहते हैं शर्म नहीं आती कि हमें शादी पे बुलाते हो, हमारा फलाना वो अभी 1 महीना ही हुआ है फौत हुए हुए, 10 दिन हुए हैं सिर्फ फौत हुए हुए, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है फौत हुए हुए और आप हमें शादी पे बुला रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ गई मुझे अभी नसीन आपकी बात। तो और खास तौर पे ईद पे उनके घर खास तौर पे पुरसा करना, जिसको कहेंगे ताजियत के लिए, फिर दोबारा एक यानी उनको करने के लिए जाया जाता है, तो ऐसी कोई रस्म नहीं। हाँ वैसे हो सकता है कि चलो ईद पे ये उदास होंगे, इस दफा इनको अपने बाप के या इन बच्चों को अपने यानी कोई माँ के बगैर ईद करनी पड़ रही है, इनका कोई फौत हो गया, तो हम इनको दिलासा दिलाएं, इनको सैर कराएं, इनको को थोड़ा इनको फील ना हो, वो एक अलग चीज होती है। मगर इसको एक रस्म बना लेना जी हमने जाना है क्योंकि उनका फलाना फौत हुआ था ईद पे, तो अब जाके उनके घर ताजियत करके आए, और उनकी तो ईद ही नहीं है, और वो कहते हैं हमने क्या ईद के कपड़े बनाना है, हमारा तो फलाना फौत हो गया था, तो अब वो ईद एक अलग बात, वो यानी चीज है कि हम उसको सारा दिन बाकी दिनों में ठीक कपड़े पहनते रहेंगे, जू ही ईद आएगी जिस पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुशी करो, उस पे स्पेशली नहीं हमने खुशी करनी, आगे पीछे फिर अब 4 महीने पहले किसी की डेथ हुई है, 6 महीने पहले किसी की डेथ हुई है, उसकी डेथ के बाद अब आप नॉर्मल हो गए, आप दावतों में जा रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, लेकिन ईद पे खास तौर पे आपने ये कहा कि ये खुशी नहीं मैंने करनी, जिस खुशी को कहा गया कि ये मनाओ मुसलमानों, उसी को छोड़ दिया, पर शैतान की पैरवी की कि शैतान इस दिन बड़ा दुखी होता है जी, कि पहली ईद है उसकी। तो मैंने आपको बताया, अगर तो ये चीज बात है ना कि छोटे बच्चे हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसी उनके घर सडन है, कोई, हाँ किसी का जवान कोई बच्चा फौत हो गया था, अब वो अभी तक भी उससे निकल नहीं पा रहे, और हम उनके सिर्फ एक उसके लिए कि उनको फील ना हो, वो उसके लिए एक जाते हैं, वो अलग बात होती है। ऐसे ही हर एक के लिए चले जाना कि जी फलाने की पहली ईद है, इसके बाद हम जाके उनके घर फिर से ताजियत करें, तो ये सही नहीं है कि इसको एक रस्म बना लिया। और कितना सीरियस है ये चीज करना कि कोई भी मेकअप अप्लाई करना या कोई भी सिंगार करना या कोई भी ऐसे परफ्यूम लोशन या परफ्यूम या इस तरह की चीज लगाना इन दिनों में जबकि औरत अपने हस्बैंड के लिए सोक कर रही होती है, ये जायज नहीं है। 4 महीने 10 दिन क्योंकि काफी लंबी मुद्दत होती है, बाज लोगों को बाज औरतों को जॉब के लिए भी निकलना पड़ता है इन दिनों के अंदर, इस वजह से कि वो कहती हैं कि मतलब कोई कमाने वाला नहीं होता, तो इस हद तक ठीक है जा सकती हैं, कोई भी नहीं है उनका। लेकिन आप ये देखें कि उस दौरान ये नहीं कि जॉब पे जाते हुए आपको थोड़ा सा मेकअप लगा लिया बाहर निकल रहे हैं, जाहिर है अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा लोशन लगा लिया ऐसा कर लिया अपने आप को जरा थोड़ा सा ठीक ठाक करके गए, क्योंकि ऐसे तो नहीं जा सकते हम जॉब पे, तो वो चीज नहीं सही, ठीक है। और घर में ही रहना सही है, और इसमें ये गलत फहमी सब जी बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स, बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स है हमारी सोसाइटी में, एक तो इस तरह से करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो बेवा की इद्दत होती है ना वो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबके सरों पे उनके शौहरों को सलामत रखे, मगर जो बेवा की इद्दत है ना वो औरत के लिए गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ड्यूरेशन लंबी है ना और इसकी पाबंदियां ज्यादा हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता और इस बात को बुरा समझा जाता है कि हमें क्यों मना कर रहे हैं, हमें क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, दिल के बहलाने के लिए अगर हम थोड़ी देर पार्क चले गए, थोड़ी देर वॉक पे चले गए, किसी के थोड़ी देर घर चली गई, अब मैं तंग आ गई घर बैठ बैठ के, ये चीजें सही नहीं है, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कोई फौत हो जाता है तो फिर उसके बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं और फिर महीने तक सोग मनाए रखते हैं जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी, वरना जमाना जाहिलियत में तो ऐसे होता था, और आज भी जमाना जाहिलियत ही चल रहा होता है जहां पे हिंदू साथ ही सती कहते हैं उसको कर देते हैं साथ के, उसके साथ ही जला देते हैं उसको, तो उससे अल्लाह ताला ने हमें ऐसी चीजों को नहीं दिया कि उसके बाद तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, उसके बाद बेवा कोई वो नहीं है, उसका कोई जिंदगी नहीं है। इस मामले में हम इस तरह हो जाते हैं, और हमें तो सिर्फ कहा गया कि शोक के दिनों में ऐसे नहीं करना, उसके बाद ये नहीं कि बेवा की कोई लाइफ नहीं है, कोई मनहूस हो गई या कुछ हो गई, ये चीजें हमारे अंदर नहीं है। पाकिस्तान कैन वी गो द डेथ प्लेस विच अकर्ड बिफोर, जी बहुत अच्छा इनका सवाल है कि क्या अगर हम बहुत अरसे के बाद किसी को मिलते हैं और उसके बाद हम उनके घर ताजियत के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम दावत थे नहीं, तो क्या हम जा सकते हैं? आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, मगर बात वही है कि हमें ताजियत के एटिकेट्स आने चाहिए। ताजियत के एटिकेट्स ये नहीं है कि अब आप गए हैं एक्चुअल मसलन 2 साल के बाद, अब वो बेचारा अच्छा भला बैठा हुआ है, अब उसको यादें दिला दिला के अब उसको रुला के ही हमने आना, ये ताजियत नहीं होती। ताजियत तो बल्कि किसी का गम है तो उसका गम हल्का करने की कोशिश करो, ना कि अब हम ताजियत के लिए आए तो अब हमने उसको सारा पहला जमाना याद कराया, फिर उसको पूछा कि अच्छा क्या हुआ था फिर उस वक्त, फिर क्या हुआ था, अब वो इंस्टेड ऑफ के आप उसको अच्छा उसका वो दिल बहला दें थोड़ी देर के लिए, उसको तसल्ली दे दें, उल्टा आप उसको गमगीन करके आ जाते हैं। तो आप जा सकते हैं मगर ताजियत के असूल भी जानने चाहिए, ठीक है। ये बातें सबको समझ आ गई है ना, बिल्कुल सबर की, और अगर कोई वो बात करते हैं तो उसके ऊपर भी अजर की उनको बात करें जी, बिल्कुल अच्छा। ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि सारी जिंदगी के लिए उसको मनहूस समझ लिया जाता है, हालांकि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बेवा की इद्दत के बाद ही यानी वजाए हमल के बाद जो ही इद्दत यानी खत्म हो गई वजाए हमल होते ही, तो उनके निकाह के पैगाम आने शुरू हो गए। अब बच्चे की पैदाइश के बाद जो भी नफास वगैरह का टाइम होता है, जो उसको अपने यहाँ कहते हैं जो 40 दिन का वक्त होता है, जो ही वो गुजर जाए तो उसके बाद वो निकाह कर सकती है, फिर कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि देखो इसको कितनी जल्दी पड़ी हुई थी शादी करने की और ऐसे वैसे। हमारे यहाँ तो बेचारे सारी जिंदगी उनके पास कोई रिश्ता ही नहीं आता, निकाह बेचारी ने क्या करना। उस जमाने में ठीक है इतना था कि कोई बेवा के साथ भी निकाह करने में कोई हार नहीं समझता था, तो ये हमारे पास दलील है कि ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि वो उसमें कोई नहूसत आ गई हो। और ये मुझे खास तौर पे किसी एक बच्ची ने मुझे कहा था कि आप प्लीज क्लास में जरूर ये अपने बताएं एक बेवा के साथ क्या करना चाहिए और क्यों उसको लोग सताते हैं और ताने देते हैं और उसको बुरा समझते हैं। ये समझती हूँ कि हमें अब इस जमाना जाहिलियत के उससे निकल आना चाहिए जो हिंदुआना जमाना जाहिलियत है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का में भी नहीं इस तरह से बुरा समझा जाता था, मगर आज के वक्त में अभी तक भी ऐसा है कि ऐसी लड़की बेचारी के लिए कोई फ्यूचर नहीं होता। यही नहीं सिर्फ कि उसका कोई रिश्ता नहीं भेजता, बल्कि اس کو کوئی اپنی شادی پہ دلہن کے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ سات سہاگنیں ہی آ کے دلہن کو کچھ کریں گی، لیکن اس کا سایہ نہ پڑ جائے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. اور پھر ہم نے یہ سارا دیکھ لیا تھا کہ عدت کیا ہوگی اور عدت میں کیا کیا اس کے ریسٹرکشنز ہیں، وہ ہم نے دیکھ لی تھی. اب لعان کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا الحمدللہ سر ریڈی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پھر ہم لعان کر لیں گے، ٹھیک ہے، کتاب لعان. اچھا ناٹ یٹ، اچھا ٹھیک ہے. تب سٹنازین آپ بتائیں گی کہ لعان کیا چیز ہے، کس چیز کو لعان کہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لعان اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ نے اگر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تو ویسے تو وہ چار گواہ لانے چاہیے پر وہ نہیں لا سکتا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے پہ لعان کریں گے، مطلب ایک دوسرے پہ قسم کھائیں گے اور پھر لعنت کریں گے فورتھ ٹائم.
اچھا کسی نے کسی کو، اچھا یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، کسی یا اپنے گھر کے دروازے پہ کسی کو اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کہیں چلو باہر نہیں دیکھا، باہر تو اور بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں آیا تو ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھا ہوا تھا آدمی اور بیوی بھی اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے، تو اس کے اوپر کیا لعان ہوگا؟
نہیں،
ایسے دیکھنا مطلب ہے، ایسا ہی نہیں کہ اس کسی چیز کے اوپر بھی الزام لگا کے اور اس کے اس کو کر دیا کہ میں نے تو فلاں کو دیکھا تھا اور یہ ہوا وہ ہے، اس طرح کا. تو پھر یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو ہسبینڈ وائف کا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی بھائی اپنی اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو دیکھ لیتا ہے، بہن کو یا کوئی دیکھتا ہے، تو پھر کیا فوراً گولی مار دینی چاہیے؟
پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ
یا اس کو غلط کام کرنے میں دیکھ
غلط کام کرتے ہوئے
تو کیا کرنا چاہیے؟
بھائی اپنی بہن کو دیکھ لے، وہی پہلے تو چار گواہ لائے، اور اگر نہیں تو پھر اس سے ہی پوچھا جائے گا.
کیا پوچھا جائے گا اس سے اگر نہیں لاتے؟ کوئی دوست نے کسی دوست پہ کہہ دیا کہ بنے تو اس کو اس طرح، اس کا کریکٹر خراب ہے، ایسے ہے، تو کیا کرے گی؟ کیا اس طرح سے دوستوں کو بتانا چاہیے فلاں کا کریکٹر خراب ہے، وہ ایسے ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور فلاں پولیٹیشن ہے وہ اس کے تو اس طرح کے تعلقات ہیں فلانی کے ساتھ، ایسی باتیں ہوتی ہیں نا مطلب معاشرے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟
اس طرح سے بتانا نہیں چاہیے، مطلب اگر آپ سے کوئی ریلیٹڈ ہے تو پہلے اس کی
تحقیق. آپ نے کہا چار، کیسے تحقیق کریں گے؟ آپ نے کہا چار گواہ لے کر آئیں گے، اور چار گواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟
پھر اسی کو پوچھیں گے، اب اگر وہ سچ کہے تو جو بھی وہ کہے اس کے ساتھ ہی جائیں گے.
اچھا اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں یا تو چار گواہ لے کر آئیں جو وٹنسز ہوں اس عمل کو دیکھنے کے، تب کوئی بات کی جا سکتی. اگر ایسا نہیں کر سکے تو جس نے الزام لگایا اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تہمت لگائی ہے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی کسی کی باتیں کرتا پھر آپ کو پتا ہے فلاں پولیٹیشن ایسے ہے، وہ اس کے تو اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس فلاں کے ساتھ ہے، اور یہ لڑکی فلاں کے ساتھ ہے. لڑکیوں کو تو فری فار آل ہی سمجھاتا ہے، ہمارے محلوں کے اندر اس کے اندر اتنے الزام لگائے جاتے ہیں، کوئی بیچاری بیوہ ہو جائے تو اس کے اوپر الزام ہوتے ہیں، یہ فلانی دکان پہ جاتی ہے، اس کے تو اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا تو فلانے کے ساتھ ایسا ہے، یہ چیزیں. یعنی اتنی بڑی یہ بات ہے برائی کی تہمت لگانا کہ یعنی اگر یعنی چار گواہ لے کر آؤ، اگر چار گواہ نہیں لے کر آتے تو تم خود آ جاؤ، پھر تمہاری پیٹ ہوگی اور کوڑا ہوگا. اتنی بڑی بات،
بھائی بہن ہے تو بھائی تو پھر ایسا نہیں چاہے گا، وہ تو
نہیں چلو کرے گا، وہ تو کسی کو بات نہیں کرے گا. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مطلب میاں بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہوگا تو وہ یہ کسی کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں. بس عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتی میرا ہسبینڈ زانی ہے، میرا ہسبینڈ یہ ہے وہ ہے، تو کیا وہ ایسے باتیں کر سکتی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوتا ہے میرا میاں ایسے پھیلانا ہے، ان کا حسنانی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو یا تو پھر لعان تک آ جاؤ، نہیں تو پھر زبان بند رکھو، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ نہ شوہر بیوی پہ لگا سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر پہ لگا سکتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شوہر تو بیوی پہ نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی جتنا مرضی شوہر کے اوپر لگائے، ایسے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. میاں بیوی کے درمیان اگر ایسی کوئی بات ہو تو پھر या तो यहाँ तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर अगर नहीं उसके साथ रहना चाहते तो तलाक ले ले, और अगर वरना अगर लियान तक नहीं जाना चाहते फिर सबर से बैठी रहे वो औरत। लेकिन ऐसे नहीं कोई कर सकता कि दुनिया जहान के अंदर बातें बनाते फिरे, दुनिया जहान के अंदर स्कैंडल्स एक सोसाइटी के अंदर इतने आम हो और लोग इसी तरह हंसी खुशी चलते फिरे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा के आराम से बच के नहीं बैठ सकता, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा के ये नहीं कर सकता कि मैं तो बरी जना मैं किसी के खिलाफ भी जुबान खोल दूं। और जी बिल्कुल ये मैंने बताई थी, तो ये किसी के ऊपर उसने ऐसी बात लगाई थी तो अल्लाह की तरफ से क्या उसके लिए सजा आई कि उसका हाथ उसके साथ स्टक हो गया था, जो डेड बॉडी थी जिसको वो वॉश कर रही थी और उसने बुरी बात कही थी उसके बारे में। तो इसलिए ये चीज को जहन में रखना चाहिए। अच्छा जी, अब अगला इसके अंदर है कि क्या कसम खाने के बाद दोनों का अंजाम होगा, ये मरियम आप बताएंगी। मरियम आप बताएंगी।
वालेकुम
अस्सलाम
रहमतुल्लाह। और वो झूठा है मेरा मियां, और इसी तरह पांचवी बार वो कहेगी कि अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर लानत हो अल्लाह की, और इसी तरह वो भी चार बार कहेगा कि मैं जो हूँ वो कसम खाता हूँ कि मैं सच्चा हूँ और वो झूठी हो, और अगर मैं झूठा हूँ तो फिर
ठीक है शाबाश। उसके बाद क्या होगा? अच्छा फिर आप ठीक है, आप नहीं आप ना बताएं, आप कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया मैं उनसे पूछती हूँ। जज़ाकअल्लाह खैरन मरियम जी। राहत आप बताएंगी कि उसके बाद क्या होगा? जी जब लियान कर लिया है तो अब मियां बीवी का यानी क्या बनेगा, उनका क्या आपस का ताल्लुक होगा?
वो आपस में एक मिनट भी इकट्ठे नहीं रह सकते, तलाके बाइना हो जाएगी कि वो बिल्कुल वजू नहीं कर सकेंगे।
शाबाश, यानी फिर उसके बाद वो एक सेकंड भी ये नहीं है कि उसके बाद लियान करके भी हंसी खुशी घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तब भी वो उनकी समझ लें ऐसे ही हो जाएगी कि आपस में खुद ब खुद तलाक हो गई, खत्म हो गया, तीन तलाके हो गई और उनका ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये बात जरूरी है कि लियान के साथ ही ये हो गया। लियान का मतलब ही जब देखें कोई किसी साथ इस हद तक पहुंच जाए तो फिर उसके साथ रहने का भी क्या है?
ये तो खास शर्त है ना, जब लियान हो जाए तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इकट्ठे नहीं हो सके मतलब के तलाक के बाइना है जो
सही
बढ़ चुके हैं।
अच्छा अब आपने जज़ाकअल्लाह खैरन, आपने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो चीजें हैं इससे कितनी अपोजिट है। यहाँ पे बता दिया गया कि बस लियान होगा खत्म, बात खत्म हो गई, तुम अपना रास्ता लो, तुम अपना रास्ता लो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो उसको गोली मार दी, उसके टुकड़े कर दिए, उसको तेजाब डाल दिया, उसको आग लगा दो, उसको ऐसे कर दो क्योंकि गैरत है तुम्हारे अंदर। और हम हदीस में क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा गैरत अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला ने भी नहीं ये फरमाया कि तुम उसका ये हाल कर दो कि उसको दोबारा कभी किसी बाहर मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, वो ऐसे हो जाए। यानी आप ये देखें इस्लाम के अहकामात क्या हैं और आए दिन हम अपने माशरे में क्या देखते हैं, और हम इसलिए ये सब कुछ करते हैं, कहते हैं गैरत बहुत ज्यादा है ना, तो गैरत सबसे ज्यादा तो अल्लाह ताला के पास है और इसीलिए उसने ये सब चीजों को हराम किया है। क्या अच्छा और कोई रह गया जिससे मैंने सवाल ना किया, कोई और क्लास में ऐसा है? जी समिया अख्तर आप हैं। अच्छा एक आदमी के उसकी मियां और बीवी के कलर के अलावा किसी और रंग का बच्चा पैदा हो गया तो क्या इसका मतलब यह है कि औरत ने कोई कसूर किया इस वजह से इस तरह का बच्चा पैदा हुआ, कि औरत ने कहीं बाहर गलत काम किया है? जी समिया आप बताएं।
नहीं, अच्छा, रंग यानी कि ननिहाल या दधियाल में किसी के ऊपर भी जा सकता है, तो इस तरह से औरत पर शक नहीं कर सकते अगर बच्चा माँ या बाप दोनों में से किसी से भी नहीं मिलता जुलता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ऐसे में खाम का किसी पर शक नहीं किया
जा। जज़ाकअल्लाह खैरन। और ये भी याद रखना चाहिए कि इसके बाद मेहर भी नहीं आप ले सकते वापस ना, ये नहीं कर सकते कि आप मेहर दे मुझे, ये भी इसके अंदर नोट कर लें। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट کتاب العتق پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم، آپ لوگ پریپیئر ہو کے آئیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا پھر آپ لوگ پھر صرف ایڈمنز بتایا کریں کہ وہاں پہ ٹائم ہو گیا یا نہیں ہوا. جی نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہوگی، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے مجھے ریمائنڈ کرا دیا. نیکسٹ ویک نہ ریویو ہوگا نہ کلاس ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ لانگ ویکینڈ ہے یہاں پہ اور چھٹی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں. میرے خیال میں اس کے بعد بھی رمضان ہے تو پھر تو ہماری یہ لاسٹ کلاس ہی ہوئی. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے اور زندگی دے. تو آفٹر رمضان پھر کلاس ہوگی، بتا دیجیے گا جب سر ریڈی ہو جائیں. تو نہیں جی، فرائیڈے کلاس کی تو آپ کو کبھی چھٹی نہیں ہو سکتی جب تک میں زندہ ہوں اور میرے اندر جان ہے، مگر یہ آپ کو حدیث کی کلاس کی ہوگی چھٹی آپ کی. ٹھیک ہے، حدیث کی کلاس رمضان میں نہیں ہوگی. نہیں رمضان میں نہیں ہوگی حدیث کی کلاس، اور آپ کی انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد پھر اب کلاس ہوگی، اور نیکسٹ ویکینڈ بھی نہیں ہوگی. اب آپ لوگ بالکل بھول نہیں جائیے گا حدیث کو، اس کو آپ دہراتے رہیں کیونکہ آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ آفٹر رمضان 25 جولائی کو ہوگا. کچھ کلاسیں ہوں گی اس سے پہلے، لیکن آپ کو میں ٹائم دے رہی ہوں کہ رمضان میں اتنا موقع نہیں ملتا حدیث دیکھنے کا، آپ قرآن پہ کانسنٹریٹ کریں. رمضان کے بعد آپ اور ابھی جتنے دن رہ گئے آپ تیاری اپنی ان تمام جتنے ہم نے چیپٹرز پڑھ لی ان تمام کی کریے گا، کیونکہ جب میں آپ کو انشاءاللہ کتاب النکاح اور کتاب الرضاع کا ٹیسٹ دے دوں گی اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا کتاب الطلاق اور لیان کا. کیونکہ مجھے کافی سارے کوسچنز ہیں اس میں سے، اس لیے میں آپ لوگوں کو دو الگ الگ ٹیسٹ دوں گی. ٹائم از فرائیڈے کلاس، ان کو فرائیڈے کلاس کا بتا دیں. جولائی 11 کو انشاءاللہ تعالی، ہاں جی رمضان کے بعد وہی کلاس ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی. اگر سر اس وقت تک اویلیبل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے کلاس 11 کو، ادروائز پھر اس سے اگلے ویکینڈ پہ ہوگی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا اویلیبلٹی ہے. آپ لوگوں کو ای میل آ جائے گی، آپ اپنی ای میل میں چیک کر لیجیے گا. ہاں جی رمضان میں نہیں کوئی کلاس. جو نئے جنہوں نے یہاں پہ جوائن کیا ان کو بتا دیں کہ فرائیڈے کی تفسیر کلاس کا کیا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا الحمدللہ یہاں تک، اللہ کا شکر ہے ہمارا ریویو بھی ہو گیا، تاکہ ہم انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو ہم ایک نئے چیپٹر سے سٹارٹ کریں گے اپنا ریویو، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سارا مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگ جوائن کر لیں وہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم آپ اب رمضان میں تو ایوری ڈے ہی آپ لوگوں سے سب سے انشاءاللہ ملاقات رہی آج کی نیکی کے پروگرام میں. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.